रसो अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। सूर्य और चांद में ये जिज्ञासु के लिए भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव करे, भगवान की भावना करना, ब्रह्म भावना करना, भगवत बुद्धि करना, भगवत भावना करना एक बात है और भगवत तत्व का साक्षात्कार करना दूसरी बात है। शालिग्राम में भगवत भावना की, शिवजी के बाण में शिवजी की भावना की, अंबाजी की प्रतिमा में मां की भावना की, ऐसे किसी वस्तुओं में भावना भगवत भावना अच्छा है। इन भगवत भावना एक बात है, भगवत भावना भावना करने वाले के अधीन रहती, भाव हमेशा भाव करने वाले के अधीन होता है, ज्ञान भाव करने वाले के अधीन नहीं होता, ज्ञान वस्तु तंत्र होता है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसी का वैसी जानना ज्ञान है, और जो जैसी हमने नहीं जानी और भावना की तो भावना में परिवर्तन हो जाता है। भावना अंतःकरण की एक, किसी ने पूछा कि महाराज भगवान के दर्शन में और आत्म साक्षात्कार में क्या फर्क है। प्रभु का दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण का, श्री रामचंद्र जी का और भगवान का, भगवान का दर्शन और आत्म साक्षात्कार में क्या फर्क है। भगवान का दर्शन ये चित्त की भाव प्रधान वृत्ति है, भगवान का दर्शन ये चित्त की प्रेम माधुर्य भरी वृत्ति है, और आत्म साक्षात्कार चित्त को जो चैतन्य सत्ता देता है, अनंत अनंत चैत, अनंत अनंत चित्त, अनंत अनंत सूर्य, अनंत अनंत चंद्रमा, अनंत अनंत नक्षत्र जिस तत्व से चल रहे हैं और अपने अपने नियम से काम कर रहे हैं, उस तत्व को मैं रूप में अनुभव करना ये साक्षात्कार है। युधिष्ठिर को, अभी जिसको दिल्ली बोलते हैं उस समय हस्तिनापुरी बोलते थे, महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को राज्य अभिषेक हुआ। युधिष्ठिर को राज्य अभिषेक करके भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा के साथ द्वारका लौट रहे थे। मारवाड़ देश में मातंग ऋषि नाम के एक ऋषि, बड़े सात्विक ऋषि थे, खूब तप करते थे, ब्रह्मचर्य का ओज और भृगु के घर जन्म लिया हुआ, ब्रह्मचर्य जप तप ने उन्हें चमका दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, श्री कृष्ण उनके दर्शन करने गए। उत्तंग ऋषि का श्री कृष्ण ने सत्कार किया, बाद में उत्तंग ऋषि ने श्री कृष्ण का भी आदर किया, पूजन किया, सत्कार किया, बातचीत चली। बातचीत करते करते श्री कृष्ण ने बताया कि महाभारत की युद्ध का पूर्ण विराम हुआ, राज्य अभिषेक करके आए, कौरव ऐसे मारे गए, पांडवों का विजय हुआ। जब कौरवों के विनाश की बात सुनी उत्तंग ऋषि ने, कुपित हो गए। कुरु वंश में इतने महारथी थे, इतने बलवान व्यक्ति, और उन सब का विनाश तुमने करवा दिया। तुम चाहते तो उनकी रक्षा कर सकते थे, तुम्हारे में बल था उनको बचाने का, और फिर तुमने उनको मरवा दिया। कुपित होकर श्राप देने को तैयार हो गए। श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तंग ऋषि, तुम श्राप देने के पहले जरा मेरी बात सुन लो। आप भृगु के कुल में हुए हो, ब्रह्मचर्य का बल है आप में, जप का तप का धारणा ध्यान का तुम्हारे पास सामर्थ्य है, लेकिन मेरी बात जरा सुन लो। तुम्हारे जप से, तुम्हारे ब्रह्मचर्य व्रत से, तुम्हारे सत्य व्रत से तुम्हारे पास तो शक्ति है, लेकिन सब शक्तियों का जो मूल कारण है वो मैं हूं। मैं तुम्हारे इन श्रापों से प्रभावित नहीं होता हूं, कारण कभी कार्यों से प्रभावित नहीं होता, बुदबुदे कई उछल पथल करे, लहरें कई उछल पथल करे, उससे समुद्र कहीं सूख नहीं जाता। सब लहरियां समुद्र में भले ही खेल करें, लेकिन समुद्र का कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसे ही सब भूतों का मैं आदि कारण हूं, मुझ पर तुम्हारे श्राप का कोई असर होगा नहीं। पहले तुम सुन लो मेरे को। मैं जिस जिस देश में, जिस जिस काल में, जिस जिस रंग में, जिस जिस रूप में अवतरित होता हूं, उस उसकी मर्यादा तो मैं करता हूं। गंधर्वों के शरीर में जब उतरता हूं तो गंधर्वों के अनुकूल आचार करता हूं। रामावतार में जब प्रकट होता हूं तो फिर मर्यादा का अनुसार आचार व्यवहार करता हूं। ऋषि के वहां प्रकट होता हूं तो ऋषि को जैसा शोभे ऐसा करता हूं। ठीक मानव रूप में मैं आया धर्म की स्थापना करने, साधु संतों का आदि आपने सुना होगा ना कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानाय धर्म से संभवामि युगे युगे परित्राणाम साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम। तो उसलिए मैंने जो मेरे से हुआ परित्राण साधुओं के लिए, दुष्ट लोगों को विनाश करने के लिए, मेरा जिस वक्त जिस हेतु के लिए जन्म होता है मैं करता हूं, और मैं अपनी मर्यादा भी निभाता हूं। मानव तन में आया तो मैंने कुरु वंश में पैदा हुए कौरवों को पहले दूत होकर जाके समझौती करने के लिए, संधि करने के लिए मैंने उनको प्रार्थना की। 5 गांव पांडवों को दे दो तो भी मैं समझौता करा दूं, यहां तक मैं बात को ले आया। लेकिन उन्होंने मेरे एक बात नहीं मानी और मेरे को कहा कि सुई की नोक पर धूली का दाना टिक सके उतना भी हम इनको रजकण भी देने को तैयार नहीं। उसलिए न छूट के मुझे युद्ध करवाना पड़ा, और युद्ध करवाना पड़ा, युद्ध हुआ। युद्ध तो हुआ लेकिन कौरवों को मैंने वीर गति प्राप्त कराई और पांडवों को मैंने राज्य दिया। मैंने तो कुछ लिया नहीं क्योंकि मुझे कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। सबके रूप में पांडव होकर मैं भोग रहा हूं, कौरव होकर मैं भोग रहा हूं, ऋषि होकर मैं तप कर रहा हूं। मुझ कारण को किसी कार्य के पदार्थों की आवश्यकता नहीं, मैं आदि कारण सबका हूं। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और भगवान कृष्ण की पूजा की। कृष्ण को देखा तो ऋषि ने पहले था, इन आंखों से तो श्री कृष्ण दिख गए थे। भावना से किसी को भगवान दिख जाए उसकी अपेक्षा इस आंखों से वैसे ही दिख जाए वो तो अच्छा है। आप ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भावना करते करते आपको भगवान के दर्शन हुए, श्री कृष्ण के, श्री रामचंद्र जी के, किसी देव के दर्शन हुए। दर्शन होना अच्छा है, लेकिन इस ऋषि के पास तो साक्षात श्री कृष्ण गए। फिर भी पहली मुलाकात में श्री कृष्ण के दर्शन और बाद में श्री कृष्ण तत्व को समझने के बाद उसकी दृष्टि बदल गई। तो दर्शन में और ज्ञान में, भगवान का दर्शन एक बात है और भगवान तत्व का साक्षात्कार दूसरी बात है। भगवान का दर्शन ऐसे ही जल का दर्शन एक बात है और जल में जो रस है उसका साक्षात्कार दूसरी बात। जल का दर्शन तो होता है हमको, सागर लहरा रहा है, देखा क्या कितना सुंदर है, कितना मधुर है, बड़ा आनंद आ रहा है। पानी चखो तो खारा और उसके विश्लेषण करो तो दो गैस, किन तुम्हारे हृदय को जांचो तो रस आ रहा है। तो जैसे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे हृदय को विज्ञानी लोगों के टेबल पर टुकड़े टुकड़े अणु अणु करके रख दे तो रस कहां था, नहीं दिखेगा, फिर भी रस आ रहा है। ऐसे ही उस पानी को तुम टुकड़े टुकड़े करके रखो तो रस नहीं देखेगा, फिर भी सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, जो इंद्रियों का विषय नहीं, अनुभव गम्य है, वैसा जल में रस मैं हूं, सूर्य में तेज मैं हूं। जिन आंखों से तुमको ये प्रकाश दिखता है, सच पूछो हम प्रकाश नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश, श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूं। ये बता रहे हैं कि जो तुम हो वो मैं हूं, तो तुम अपने को सूर्य और चंद्रमा में और जल में जो रस है ऐसा अपने को नहीं समझते हो, लेकिन कृष्ण समझते हैं, समझते और तुम्हारे आगे दोहरा रहे हैं कि शायद तुम भी अपने आप को ऐसे समझ लो। यही बड़प्पन है कि तुम्हें बड़ा बनाने के लिए अपनी वास्तविकता का बयान कर रहे हैं। दो प्रकार के व्यक्ति होते, एक होते शोषण करके तुम पर अधिकार करके राजा होकर बैठ जाए, दूसरे ये होते हैं कि तुमको जगाकर तुम्हें राजा बना दे। तो जो तुमको जगाकर तुम्हें राजा महाराजा बना देते हैं, राजा बना देते हैं, वे महाराज होते हैं, श्री कृष्ण महाराज बोले जाते हैं। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण महाराज ने कहा, कभी कभी महाराज भी बोलते हैं उनको। जो राजा बनाता है तो वो महाराज हो जाता है, राजाओं को बनाने वाला, एक्टरों को नचाने वाला डायरेक्टर होता है ना, ऐसे राजाओं को बनाने वाला वो महाराज होता है, महान राज्य उनके पास है। हमको जो प्रकाश दिखता है, सच पूछो तो इन आंखों से प्रकाश दिखता नहीं, प्रकाश जिन पदार्थों पर पड़ता है वे रूपांतरित होकर हमको आभास दिखता है। अंधे आदमी को भी प्रकाश नहीं दिखता और आंख वाले को भी प्रकाश नहीं दिखता। अंधे आदमी को तो ये आंखें नहीं, उसलिए प्रकाश नहीं दिखता, और आंख वाले को ये रूपांतर दिखता है, प्रकाश नहीं दिखता। प्रकाश जिन पदार्थों पर पड़ता है और रूपांतरित होता है तो रूपांतर दिखता है, वास्तविक प्रकाश नहीं दिखता। और जो सूर्य में चंद्रमा में जो वास्तविक प्रकाश है, जैसे जल दिखता है हमको, जल को तोड़ दिया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखा, लेकिन जल में जो रस है वो दिखता नहीं, वो अनुभव में आता है। ऐसे ही सूर्य में और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो प्रकाश मैं हूं। तो इस सूर्य को और चंद्रमा को देखते हो, इनकी इतनी प्रभा देखते हो, इन्हीं से सारा जगत संचालित हो रहा है, और यही जगत का भौतिक जगत के मूल कारण ये साधन दिखते हैं। लेकिन ऐसे सूर्य और चंद्रमा भी कई हैं, ऐसी पृथ्वियां भी कई है, और उन पृथ्वियों में गंध गुण, पवित्र गंध गुण, सुगंध नहीं कहा, पवित्र गंध कहा, सुगंध परफ्यूम आदि जो गंधे हैं, सुगंध है वो पवित्र नहीं है। उन गंधों से, उन सुगंधों से तो आदमी के अंदर सुषुप्त जो सेक्स एनर्जी है, सुषुप्त जो विकार है, सुषुप्त जो ममताएं हैं, सुषुप्त जो अहंकार है वो जागृत होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने पृथ्वी में जो पवित्र गंध वो मैं हूं, ऐसा नहीं कहा सुगंध। सुगंध कहते तो दुर्गंध भगवान नहीं है, सुगंध भगवान है ना। भगवान का वास्तविक स्वरूप न सुगंध है न दुर्गंध है, पवित्र गंध। सुगंध तुम्हें विकारों के तरफ ले जाती है और दुर्गंध तुम्हें ग्लानि के तरफ ले जाती है, और पवित्र गंध तुम्हें अपने पवित्र स्वरूप के तरफ ले आती है। कई लोग अपने को भागशाली मानते, परफ्यूम परफ्यूम लगाते इधर उधर, यहां वहां तक, हा शौक लेकिन वो अपने केंद्र से नीचे गिराने की चीजें हैं। पेरिस में तो इसके विशेषज्ञ हैं कई लोग, परफ्यूम कौन सा परफ्यूम कौन सी गंध से आदमी की कौन सी ऊर्जा विकसित होगी, और वो ऊर्जा वो जीवन शक्ति नीचे के तरफ जाएगी। उन लोगों ने ऐन्द्रिक खोज किया, ऐन्द्रिक खोज में आदमी को सुख के तो साधन दिए, लेकिन सुख के साधनों के साथ साथ वो सुख के साधन आदमी को परमात्मा गंध से, परमात्मा पवित्रता से, परमात्मा शांति से, परमात्मा रस से वो साधन दूर ले जाते। इसीलिए जो अत्यंत भोगी है उसके जीवन में विक्षेप ज्यादा होता है, जो अत्यंत भोगी है उसके जीवन में भय ज्यादा होता है, जो भोगी है उसके जीवन में विकार ज्यादा होते, क्रोध ज्यादा होता है, अशांति ज्यादा होती, और जो कम भोग भोगता है उसमें क्रोध अशांति विकार कम होते हैं। लेकिन जो भोग और योग, राग और द्वेष, इन पवित्र अपवित्र दोनों से परे, शुभ सुगंध और दुगंध दोनों से परे, जहां से पवित्र गंध का भी ज्ञान होता है, उस स्वरूप को जो मैं मान लेता है उसकी तुलना अष्टावक्र कहते हैं, तुलना के न जायते। ऐसे बुद्ध पुरुष की तुलना हम किससे करें। श्री कृष्ण कहते हैं ये साधक को, जिज्ञासु को सर्वत्र ब्रह्म ज्ञान कराने का एक तरीका है कि जल दिखे तो जल में जो सूक्ष्म रस है वो मैं हूं। आपने पेय पदार्थ कोई भी पिया, पानी पिया अथवा कोई मीठा पिया, कोई खट मीठा खा पिया, कुछ भी पिया, तो ग्लास में तो किसी को पानी दिखेगा, दूर से ग्लास में शरबत दिखेगा, आंखों से तो वो शरबत दिखा, रस नहीं आया, जब पिया तो आ
ठंडक बड़ी।
अगर उसमें ही रस होता तो वो कोई बेचता नहीं। तुम्हारे अंदर तुम्हारी जिह्वा में रस है, उसलिए वह रस ने बाहर के रस ने तुम्हारे जिह्वा के रस ने दोनों ने अद्वैतता का अनुभव किया। बाहर का ग्लास का पेय और तुम्हारे जिह्वा के रस में दोनों में जो सूक्ष्म एकतांता आई, एक ऐसी क्षण आई जो सूक्ष्मता नित्यांत सूक्ष्मता आई, तो तुम्हें मजा आया। अगर तुम ज्यादा पीते हो तो उब जाते हो, थक जाते हो। तो ज्यादा पेय तो इंद्रियों के विषयों में आदमी थक जाता है, लेकिन इंद्रियों से परे जो सूक्ष्म रस है उसको पाने के लिए, अथवा तो यूं कहें कि श्री कृष्ण ने यह सोचकर कहा हो कि जल दिखे तो जल में भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जल का नाम रूप बाद करके जो अस्थि भांति प्रिय परब्रह्म है वहां दर्शन कर सके साधक, उसलिए जल में रस मैं हूं और सूर्य में प्रभा मैं हूं, चंद्रमा में प्रकाश मैं हूं, प्रणव में, वेदों में प्रणव मैं हूं। अब यह बड़ा सूक्ष्म विषय आ रहा है, प्रणव सर्व वेदेशु। विज्ञानियों का, शरीर शास्त्रियों का ऐसा मानना है कि पति पत्नी जब सेक्स में उतरते हैं, विकार में उतरते हैं, विकार तो नीचे के केंद्र में आदमी को ले आते हैं, जैसे तालाब के नीचे आप जाओ तो ज्यादा देर नहीं ठहर सकते, तालाब के ऊपर तो हाउस बोट बनाकर आप घंटों तक रह सकते हैं, महीनों भर रह सकते हैं, ऐसे शब आसन में आप घंटों तक रह सकते हैं तालाब के ऊपर, सरोवर के ऊपर, और सरोवर के नीचे गहराई में आप ज्यादा देर नहीं रह सकते। ऐसे ही राम के जो केंद्र हैं, शांति के केंद्र ऊपर हैं, ऊपर आदमी प्रेम में और पवित्र प्रेम में, पवित्र शांति में आदमी महीनों भर समाधि में रह सकता है, घंटों भर आदमी सुनसान शांति में, पवित्र शांति में रह सकता है, लेकिन घंटों भर आदमी सेक्स विकार में नहीं रह सकता। जैसे सरोवर के तले में आप ज्यादा देर नहीं रह सकते, ऐसे आदमी को जब सेक्स उत्पन्न होता है काम विकार, तो काम विकार की घड़ियों में वो ज्यादा देर नीचे नहीं रह सकता, फिर उसे ऊपर आना पड़ता है, और नीचे जाते समय उसकी सुषुप्त पड़ी हुई जो शक्तियां हैं उसका जब ह्रास होता है उतनी घड़ी उसको सुख आता है, और वो काम का जो सुख है वो काम का सुख राम के सुख से आदमी को नीचे ले आता है। शरीर शास्त्रियों का तो इतना भी कहना है कि जिस वक्त आदमी काम सुख भोगता है, पुरुष और स्त्री दोनों के शरीर से एक दुर्गंध निकलती है, उस पॉइंट पर इतनी गंदी दुर्गंध निकलती है कि उस दुर्गंध को अगर देखे तो एक दूसरे से उबान भी आ जाए, और तुम गृहस्थी जीवन में जरा सतर्कता से इसका अनुभव करोगे ना तो काम विकार से बचने का सौभाग्य भी मिल जाएगा। तो श्री कृष्ण ने दुर्गंध भी नहीं कहा, सुगंध भी नहीं कहा, पवित्र गंध कहा है। पवित्र गंध कैसी कि जैसे महावीर को तो हम प्रसिद्ध हैं इसलिए उनके नाम का सदुपयोग करते हैं, कोई भी योग साधना करे तो उसके शरीर से एक ऐसी पवित्र गंध निकलती है जो तुमको इस नाक से अनुभव नहीं होगी। तुम्हारा कोई कोई, तुम्हारे बीच कोई कोई ऐसा प्रेमी हृदय हो, कोई कोई सात्विक पवित्र दिल हो, कोई कोई जो झेल सकता हो, जैसे मछुआन को मच्छी की गंध अच्छी लगती है और दूसरी सुगंध बेकार लगती है, और किसी को कोई सुगंध अच्छी लगती है, ऐसे ही जो आध्यात्मिक जगत में कुछ ऊंचे उठे हुए हैं वे आध्यात्मिक पुरुषों की सूक्ष्म अति सूक्ष्म पवित्र गंध को झेलकर उनका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, उनका चित्त आंदोलित हो जाता है, उनका चित्त ईश्वर के तरफ करवट लेने लगता है। तो महावीर के शिष्यों का कहना था कि महावीर इस रेंज में आ गए हैं, ये हम कैसे जानते हैं कि जिस वक्त हमारे अमुक रेंज में, अमुक इलाके में हम अंधेरे में महावीर को न भी देखें हमारे गुरुजी को, लेकिन हमको एहसास होता है कि आ गए हैं, क्योंकि उनके वो आए उसके पहले ही उनको छूकर आने वाली जो हवा है वो गंध पहुंचा देती थी, वो खबर पहुंचा देती थी कि गुरु महाराज आ रहे हैं, महावीर आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने साधना करके काम रस से ऊपर उठकर पवित्र रस राम रस लिया है, ऐसे व्यक्ति बोलते तो अच्छा है लेकिन ऐसे व्यक्तियों को छूकर जो हवा आती है, ऐसे व्यक्तियों को छूकर जो आंखों के जो वेव्स आते हैं, वे वेव्स भी हमारे चित्त को शांति देते हैं और हमारे चित्त को काम से हटाकर राम के तरफ लगा देते हैं। उसीलिए कहा गया कि हे गुरुजनों, तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। हमारा दिल गिर रहा है क्रोध में, हमारा दिल गिर रहा है काम में, हमारा दिल गिर रहा है विकारों में, लेकिन जो निर्विकारी पुरुष है, जिसने राम रस को ठीक से जाना है, राम रस की भावना की अलग बात है, भगवान राम की भावना किया, अल्लाह मियां की भावना किया, खुदा की भावना किया, ये अलग बात है, लेकिन खुदा जिससे खुद खुदा है, राम जिससे राम है, कृष्ण जिससे कृष्ण है, कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, उसका नाम कृष्ण है। तो आकर्षित सब आदमियों को, प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र को नहीं, प्राणी मात्र को आकर्षित करता है आनंद, आकर्षित करता है सुख। चिड़िया भी सुख चाहती है, चकोर भी सुख चाहती है, पहलवान भी सुख चाहता है, गरीब भी सुख चाहता है। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने सुन रखा था कि दो कौओं को एक साथ देखने से आदमी का भाग्य खुलता है, दो कौओं को देखना शुभ माना जाता है। नौकर को कह रखा था कि दो कौवे साथ में बैठे हुए मिले तो मुझे खबर करना। नौकर इंतजार में था, मौका मिल जाए कहीं दो कौवे देखूं, दो कौवे देखूं। दो चार दिन के बाद एक ही जगह पर दो कौवे नौकर ने देखे तो भागा गया। और सेठ जी तो चौथे रूम में थे, और सेठ जी बुलाने गए। सेठ जी चप्पल बप्पल पहन के जो बाहर आए तो देखा कि दो कौवे तो है नहीं, एक कौवा तो चला गया था, एक ही रहा। सेठ ने नौकर को थप्पड़ मारी, पिटाई की कि बेवकूफ, कहेगा मैं आराम में लेटा था, जब दो कौवा बैठने वाला ही नहीं था, एक ही कौवा रहा, तो फिर मेरे को तकलीफ क्यों दी। इससे उसने मार पीट की, इतने में कोई मित्र उनके लिए भोजन ले आया, आज मेरे घर मेजबानी थी ऐसा ऐसा, और आप भोजन कर। नौकर ने कहा कि सेठ जी अच्छा हुआ कि आपने एक कौवा देखा, एक कौवा देखा तो आपको दावत मिली, एक कौवा देखा है तो भोजन मिला, और दो कौवे देखते तो मेरे जैसी मार मिलती तुमको। मैंने दो कौवे देखे तो मार खाई, और तुमने एक कौवा देखा तो भोजन खा रहे। जय जय। ऐसे ही जल में जो रस है, तुम्हारे रस, तुम्हारे अंदर रस है, ये है दो कौवे। लेकिन जल के अंदर जो रस है और तुम्हारे अंदर है, इन दोनों कौवों में भी रस रूप में एकता है। ग्लास में जो तुमने पेय पिया है, तो पीने जैसा, पीने योग्य और पीने वाला, पीने का रस ले, इन दोनों के वास्तविकता में एकता है, दोनों की गहराई में अद्वैत है। बाहर से जल अलग है और तुम अलग हो, हकीकत में जल और अन्न से ही तुम बने हो, और तुम्हारे से ही और जल अन्न बनता है। शरीर को जला दिया, बाष्प हो गया, फिर बरसा, तो इसमें जो जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, तेज तत्व है, वायु तत्व, तो ये बदलता रहता है, घास से मांस, मांस से घास। तो हकीकत में देखा जाए तो इनमें जो मूल है, इस पुष्प में जो आकर्षण है, इस पुष्प को देखकर जो तुम्हारे अंदर रस उत्पन्न होता है, इसमें वो सुषुप्त रस है, इसमें वो परमात्मा की चेतना है, सुषुप्त है, और तुम्हारे वहां जागृत है, इसलिए इसको देखकर आप आनंदित होते हो, लेकिन तुमको देखकर ये आनंदित नहीं होता। तुमको देखकर ये गुलाब का फूल आनंदित नहीं होता, लेकिन इसको देखकर तुम आनंदित होते हो। यहाँ जगने का सु अवसर है और यहाँ जगने में देर है। इस गुलाब को तुम खाओ अथवा कोई पशु खाए, समान पशु में से फिर वो दूध बने, और दूध में से फिर वो तुम बनो, और फिर तुम देखो तो तुम गुलाब में से तुम बने, और तुम्हारे में से इस कालांतर में गुलाब बनता है। तो जिसको तुम मानते हो मैं, उसमें तो रूपांतर होता रहता है, लेकिन जिसको श्री कृष्ण मैं मानते हैं, उसमें रूपांतर नहीं होता। ये विषय जरा सूक्ष्म है। जिसको हम लोग मैं मानते हैं, उसमें तो रूपांतर होता है, जिसको श्री कृष्ण मैं मानते हैं, उसमें रूपांतर नहीं होता। अब दृष्टि, कौन सी दृष्टि अच्छी, किसकी दृष्टि में सुख है, किसकी दृष्टि में शांति है, किसकी दृष्टि में आनंद है, भगवान की दृष्टि में सुख है, भगवान की दृष्टि सच्ची, भगवान की मान्यता सच्ची, के जीव की मान्यता सच्ची, भगवान को जगत जो दिखता है वो सच्चा दिखता है, कि हमको जो जगत दिखता है वो सच्चा दिखता है। मानना पड़ेगा कि हमको जो दिखता है वो हमारे अंतःकरण की कल्पना, हमारे अंतःकरण की भावना, हमारे अंतःकरण में जिस वक्त विकार है, हमारे अंतःकरण में जिस वक्त मलिनता है, उस वक्त विकारी भोजन हमें प्यारा लगेगा, हमारे अंतःकरण में जिस वक्त सत्व गुण है उस वक्त सात्विक भोजन हमें प्यारा लगेगा। हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में तुम्हारे लिए, किसी व्यक्ति के लिए यदि राग है तो उसके गुण दिखेंगे, अगर द्वेष है तो उसके अवगुण दिखेंगे। राग द्वेष तो प्रकृति के हैं और वो बदलते रहते हैं, इसलिए हम कभी मित्र को शत्रु बना लेते हैं, शत्रु को मित्र बना लेते हैं, मित्र और शत्रु हम बनाते हैं, क्योंकि हमारे चित्त में जैसे जैसे भाव उठते हैं, जैसा जैसा विकार होता है, तो हमको जगत विकार वाला दिखता है, हमको जगत बदलने वाला दिखता है। लेकिन हम तटस्थ ज्ञान में आ जाएं, ईश्वर की आंख से हम जगत को देखने लग जाएं, तो मित्र का वास्तविक स्वरूप और शत्रु का वास्तविक स्वरूप दो नहीं है, दोनों दिखते हैं लेकिन एक ही है। इसलिए सूफी फकीर कहते हैं, दोनों की सूरत एक है, किसको खुदा कहूं, तुझको खुदा कहूं कि इसको खुदा कहूं, दोनों को खुदा कहा, दोनों की सूरत एक है। जैसे तुम्हारा जीना, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक है, तुम शरीर को मैं मानते हो, कृष्ण अपने मैं को मैं मानते हैं। तो वेदों में जो प्रणव है, सर्ववेदेशु प्रणव सर्ववेदेशु आदि में वो परमात्मा का वास्तविक स्पंदन, वास्तविक शब्द आकार उकार मकार, ये मकार आकार उकार मकार प्रणव, ये प्रणव सब वेदों में, वेद का कोई अंत नहीं, वेद माना ज्ञान, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, जिसका अंत आ गया, जिसकी सीमा हो गई, वो ज्ञान नहीं होता है, वो भावना होती, वो माप होता है। लेकिन उस ज्ञान की चार संहिताएं हैं, इसलिए उस ज्ञान को हम वेद माना ज्ञान, जानकारी, तो हम चार वेद मानते हैं। इसकी 1121 अथवा 1127, कई आचार्य 21 मानते हैं, कई 27 मानते हैं, 1121 या 1127 उपनिषदें हैं, और इन सब उपनिषदों का निचोड़ सार कठवली में, और इन सब कठवली आदि का सब के सार बीज रूप में, कुंजी रूप में ओमकार है, अकार उकार मकार। विवेकानंद कहते थे, सब धर्म ग्रंथ, सब शास्त्र, सब संप्रदायों के शास्त्र नितांत तलाव में चले जाए, रसातल में चले जाए, फिर भी जब तक कोई सदगुरु और सतशिष्य पृथ्वी पर मौजूद है तो धर्म फिर से उठेगा। सतशिष्य कौन है कि ओम की व्याख्या सुन सके, और सदगुरु कौन है जिसके चित्त से ओमकार का अनाहद नाद गूंज सके। तो प्रणव सर्ववेदेशु शब्द खय पुरुषम नृषु, हे अर्जुन मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, अकार उकार और मकार। अ को छोड़कर आप क नहीं बोल सकते हैं, कोई भी आप स्वर बोले, स्वर और व्यंजन होते ना, तो बिना अकार के कोई आप बोले नहीं होगा। तो अकार जो है सृष्टि का स्थूल विश्व, उकार तेजस, मकार प्राज्ञ, और ओम की जो अर्ध मात्रा है वह तुर्य। ओम जो है सबका बीज है, सबका माई बाप है, मूल कारण है, और ये ओम तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर जन्मांतर तक, ये जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, इसी परमात्मा का वास्तविक ध्वनि प्रणव सब वेदों में, सब ज्ञानों में जो ओम है वो मैं हूं। तो आकाश में जो शब्द गुण है वो मैं हूं सूक्ष्म, वेदों में जो ओमकार है वो मैं हूं। तो सूक्ष्म तत्व के तरफ इशारा किया कि शब्द में मैं हूं, ओमकार वेदों में, शब्दों में जो ओमकार है, वचनों में जो ओमकार है, वेदों में जो ओम है वो मैं हूं। तो ओम को हम दो ढंग से देखें, एक तो स्थूल रूप से ओम की आकृति, उस स्थूल रूप से आकृति को हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर अथवा हृदय में उसकी भावना करें अथवा नाभि केंद्र पर उसका ध्यान धरें, तो भी हमारी सुषुप्त ओमकार की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो विकसित हो सकती है। दूसरा, हम ओमकार का उच्चारण करते वैखरी के द्वारा, वैखरी से जब करते करते फिर मध्यमा में जाएं, मध्यमा से पश्चंती में जाएं, पश्चंती से फिर हम जब परा में आ जाते तो अत्यंत सूक्ष्म अवस्था मौन को हम उपलब्ध हो जाते हैं, और वो जो मौन की अवस्था है वैखरी मध्यमा पश्चंती और परा, जो परावाणी में पहुंच जाता है तो उस आदमी को जो रस मिलता है, उस आदमी को जो सुख मिलता है, उस आदमी को जो जीवन धन्य धन्यता का अनुभव होता है, उसके आगे
इस पृथ्वी के राज्य की तो कोई बात नहीं, त्रिलोकी का राज्य भी तुच्छ हो जाता है।